الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ اور ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں کہ جس کا تعلق گھر سے بھی ہوتا ہے اور معاشرے سے بھی ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے ایک ٹاپک لیا ہے، ٹاپک بھی آپ کو عرض کریں گے، پھر ہمارا ایک سوال بھی ہوتا ہے، مختلف سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، مہمانوں کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز پر تھا، سمندر میں تھا، شپ پر تھا اور قافلہ میرے ساتھ تھا۔ اچانک سمندر میں بڑا زبردست طوفان آ گیا، جہاز بری طرح ہلنے لگا، گویا ایسا لگا کہ ہم سب پانی میں ڈوب جائیں گے۔ بڑے پریشان تھے، کیا کریں۔ اسی دوران مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، کچھ غنودگی آئی، نیند کا غلبہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود تنجینا پڑھ کر مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں، تم اور تمہارے ساتھی 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے طوفان ٹل جائے گا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے تمام قافلے والوں کو، ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ یوں مجھے زیارت ہوئی اور یوں مل کر ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کر درود پاک کا ورد شروع کیا، درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ ابھی کوانٹیٹی 300 ٹائمز، 300 دفعہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو سمندر کا جو طوفان تھا وہ تھمنا شروع ہوا، نارمل شروع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان تھم گیا اور اللہ کی رحمت سے وہ بآسانی سمندر پار کر کے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب 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 درود و سلام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور معاشرے میں جو آج ہمارا موضوع ہے، ٹاپک، وہ ہم نے لیا ہے گھر اور معاشرے میں موبائل فون کا استعمال۔ اب لگتا ایسا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ ہماری زندگی کی ضرورت بن گیا ہے، اور پوزیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، پلس بھی ہیں، مائنس بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا مقصد تو ہوتا ہی ہے نا۔ چھری ہے، پھل کاٹ لیں، سبزی کاٹ لیں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آگ ہے، اس سے کھانا بھی پک جاتا ہے، چائے بھی بن جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی جلتی ہوئی آگ پہ ہاتھ رکھ دے گا تو ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے پوزیٹیو نیگیٹو ہوتے ہیں، پلس مائنس دونوں ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کس کا کیسا استعمال کیا جائے، کیونکہ معاملہ ہے استعمال کا۔ چیزیں تو ہوتی ہیں، جیسے بائک ہے، اب بائک کے دو پہیے ہوتے ہیں، دو ویل ہوتے ہیں، تو چلانا تو اس کو دو ویل پر ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو غلط طریقے سے چلائے گا یا ویلنگ کرے گا، ون ویلنگ یا اس طرح چلائے گا، تو ظاہر بات ہے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو موبائل فون آج کل تو ہماری واقعی زندگی کا ایسا پارٹ بن گیا ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی کی چابی لیتے ہیں، تو پین لیتے ہیں، تو والیٹ لیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی ڈھونڈتے ہیں کہ میرا موبائل کہاں رہ گیا۔ تو اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، اور بعض اوقات اس کے اتنے مائنس ہیں کہ ہماری زندگی کا قیمتی وقت یہ موبائل لے جاتا ہے۔ تو اس کی احتیاطیں کیسے ہیں، اس کو کیسے ہم استعمال کریں، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں، اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہیں، और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए, हमें भी बचना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए, बूढ़े भी इसमें मुब्तला, घर में खवातीन भी इसमें मुब्तला। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू लेकर चलेंगे आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिग हमारे हाजी बगदाद रजा अत्तारी, ये भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह निगरान शुरा के साहबजादे, और ये तो वैसे ही सोशल मीडिया के हमारे निगरान हैं, जिम्मेदार हैं, और साथ साथ माशाल्लाह हमारे महरोज मदनी भाई माशाल्लाह ये भी साथ हैं। तो ये भी अपने मदनी फूल देंगे और इस टॉपिक से मुतालिक हमारी तरबियत फरमाएंगे। है बहुत अहम टॉपिक, हर टॉपिक अपनी जगह अहम होता है। तो क्या हाल है बगदाद भाई, ठीक है?
आप कैसे हैं? जज़ाकअल्लाह आपने बुलाया और मौका दिया कुछ बात करने का।
ये टॉपिक ऐसा था कि मैं ये सोच रहा था किसको लिया जाए, क्योंकि मोबाइल का जब नाम आता है तो आजकल यही होता है महरोज भाई के यंगस्टर्स जो हैं ये इसमें ज़्यादा फास्ट हैं। हम तो खुद पूछ पूछ के चल रहे होते हैं कि भाई वो बताएं क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं।
वैसे मोबाइल के साथ एक एसोसिएशन अगर मेरी है और आपके जहन में मैं आया तो ये भी कोई एक अच्छी चीज नहीं है यूं देखा जाए तो।
नहीं, पॉजिटिव आया
यूं। जी जी, वो तो है वैसे कि मोबाइल से जितना ही हम कम से कम इस्तेमाल करें उतना हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है।
नई जो जनरेशन है जाहिर सी बात है उसकी चीज़ें आप फरमा रहे थे, नई जनरेशन इसमें लगी हुई है। हर दौर में जो चीज़ें ईजाद हुई ना, हर दौर में जब से दुनिया बनी है, तो वो उस जनरेशन के लिए ख़ास तौर पर थी, और जो पिछली जनरेशन थी वो उसको देख के शौक हुई और उसको हैरत हुई कि ये क्या हो गया। तो आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा जो अभी हमें नहीं पता, तो शायद हम देख के हैरान हो। एक बात बड़ी अच्छी है कि हमारी जो जनरेशन है ना, बगदाद भाई तो शायद उसमें नहीं आते, लेकिन जो 30 35 40 साल जिनकी उम्र है उनके पास एक प्लस है। उनके पास प्लस ये है कि उन्होंने वो दौर भी देखा है जो बिना मोबाइल के था, बगैर मोबाइल के ज़िंदगी भी उन्होंने गुजारी है, सरवाइव किए है, और वो मोबाइल के साथ भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे पास ये प्लस है कि हम कह सकते हैं हमने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देख रहे हैं। लेकिन जो अब जनरेशन आ रही है उसने बगैर मोबाइल का, बगैर कंप्यूटर का, बगैर लैपटॉप का, ये जो गैजेट्स हैं, नए गैजेट्स जो हैं, इनके बगैर ज़िंदगी गुजारने का उसके पास तसव्वुर नहीं है। तो यूं देखें तो हमारा तजरीबा इस मुकाबले में ज़्यादा है कि हम इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार,
दोनों दौर देख लिए, बगैर मोबाइल वाला भी, मोबाइल वाला भी, लैंडलाइन वाला भी देख लिया।
जी जी जी,
अब तो लैंडलाइन मेरे ख्याल में तो शायद ना होने के बराबर हो गई है।
हमने भी देखा है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हर चीज देखी है।
बगदाद भाई, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मुतल्लिक क्या फरमाएंगे आप, क्या करना चाहिए मोबाइल के साथ?
आपका आपका जो प्रोग्राम का टॉपिक है और प्रोग्राम का नाम है कि घर और माशरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल,
सही।
अब तो ये तो कह ही नहीं सकते कि मोबाइल फोन के बगैर घर और माशरा अब एक तरीके से चले, कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा ही अब मोबाइल फोन का हमारे घर में और हमारे माशरे में बहुत ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस है। और अब एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का दौर है,
सही,
रोज़ बरोज़ तरक्की होती जा रही है और बहुत रैपिडली तरक्की हो रही है। आप देखेंगे पहले के दौर में जो इन्वेंशंस होती थी और जो टेक्नोलॉजी आती थी या कोई ना कोई चीज़ ईजाद होती थी, उस सालों लगते थे। अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वर्चुअल रियलिटी आ गई, अब और भी चीज़ों पर काम हो रहा है, मेटावर्स पर काम हो रहा है, एक ऐसी दुनिया पर काम हो रहा है जो आप बस एक चीज़ पहने और बस आप उस दुनिया में चले जाएं, आप अपनी दुनिया से ख़त्म, रियलिटी से दूर करा जा रहा है। और ये इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं यकीनन, और इसके बेनिफिट्स भी हैं। अब जैसे मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन के बेशुमार फ़ायदे हैं। जब से मोबाइल फ़ोन आया तो हमारे जहनों में वो तसव्वुर भी नहीं होता था, वो चीज़ें उसने आसान कर दी। एक वक्त में पहले जो एक काम करना होता था उसमें हमें सालों लग जाते थे, या किसी जगह पे मीटिंग करनी होती थी तो वो मीटिंग में जमा करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को बुलाने में इतना टाइम लग जाता था। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और 10 मिनट के अंदर वो काम हो जाता है, जो काम सालों में होता था वो अब मिनटों में और घंटों में हो जाता है। तो फायदे तो बहुत सारे हैं मोबाइल फोन के, जिन पर बेतहाशा गुफ्तगू हो सकती है कि क्या क्या फायदे हैं, मगर वो एक बात है। मैं इस पर अपने आप जवाब का एंड करूंगा कि वो मशहूर मकूला है ना कि जब तक कश्ती पानी के ऊपर चलती रहती है तो सलामत भी रहती है और आगे बढ़ती भी रहती है, मगर जब पानी कश्ती में आ जाता है तो फिर वो डूब जाती है और हलाकत की तरफ चली जाती है। तो मोबाइल फोन का भी इसी तरह है, और जिंदगी के हर मामले में यही है कि मियाना रवि और एतदाल के साथ आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। मगर अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा होता जा रहा है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को कंट्रोल किया हुआ है कि हमें वो क्या देखना है, क्या दिखाना है, और कितना यूज करना है, ये मोबाइल फोन ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है।
हमारे बगदाद भाई जो फरमा रहे हैं, मुझे इस पर हमारे निगरानी शुरा का जुमला याद आया, निगरानी शुरा का बयान था या कोई इस तरह, फरमाया कि ये आया हमारे लिए था मोबाइल, यानी इसको हमने यूज करना था, अब मोबाइल ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
बिल्कुल,
ये आया था हमारी सहूलत के लिए कि हम इससे कम्युनिकेशन कर लें, आसानियां जो जो इसमें हैं उससे हम मौजूदा दौर के हिसाब से जो कम्युनिकेशन है हम अपने फवायद लें, लेकिन इसने हमें ऐसा कैप्चर कर लिया है, सबको नहीं, एक तबका आज भी ऐसा है, मुलाकात हमारी होती है कि उनका रात सोने का टाइम है, जल्द सोते हैं जल्द उठते हैं, तो बाकायदा कहते हैं कि हम रात को 10, 10:30 या 11 बजे के बाद मोबाइल हम यूज नहीं करते, या बहुत कोई इमरजेंसी हो तो यूज करते हैं, वरना इसको अपनी पहुंच से भी इतना दूर रखते हैं कि इस तक हाथ भी ना जाए। पता नहीं इसके अंदर क्या मैग्नेट है, क्या कशिश है कि अगर हाथ की रेंज में हो तो बंदा यूं पकड़ के उसको उठा ही लेता है। आंख खुलती है सबसे पहले, मकसद पूरी आंख ना भी खुले सबसे पहले मोबाइल के क्या है, तो जरूरत है तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे हमारे बगदाद भाई ने फरमाया कि बेतहाशा इस्तेमाल और इसका बेजा इस्तेमाल, और बड़ी प्यारी बात फरमाई, मैं इसको महरोज भाई की तरफ लेकर जाऊंगा, एतदाल मयाना रवि, क्या फरमाएंगे?
एतदाल और मयाना रवि, तो ये इंसान की भी खूबसूरती है, जिंदगी की भी खूबसूरती है। कोई भी काम जब आप एतदाल में करते हैं तो आप परेशान नहीं होते। आपने जो जुमला इरशाद फरमाया ना मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली का, कि मोबाइल फोन हमारे लिए बना था, हम मोबाइल फोन के लिए नहीं बने, कुरान करीम फुरकान हमीद सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ, कि वही खुदा है अल्लाह है कि जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। और इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सिरीन ने इस बात को बयान किया कि अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात पैदा की हैं और जो जो चीज़ें ईजाद फरमाई हैं, तख्लीक फरमाई हैं, वो इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाई है, ना कि इसलिए कि इंसान उनकी खिदमत पर लग जाए। इंसान को रब कायनात ने अशरफुल मखलूकात और मखदूम बनाया है, सरदार बनाया है, लेकिन बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हम एतदाल छोड़ते हैं तो हम अपनी सरदारी को छोड़ के और गुलामी को इख्तियार कर लेते हैं, महकूमी को इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मोबाइल फोन में नहीं है अली भाई, जितनी भी इजादात हैं और जितनी भी चीजें हैं उनको जब हम देखते हैं तो वो हमारी सहूलत के लिए, जिन्होंने इन्वेंट की ना उन्होंने भी किसी सहूलत के लिए इन्वेंट की थी, तफरी के लिए, और इसलिए नहीं इन्वेंट की थी कि इंसान का इससे नुकसान हो, बल्कि साइंसी दरियाफ्तें बिलखसूस जब होती हैं तो उसमें एक बहुत बुनियादी पहलू ये होता है कि इससे इंसानियत को फायदा होगा या नुकसान होगा। जो भी नई इन्वेंशन होने जा रही होती है, जब तक वो पब्लिक नहीं की जाती, जब तक उस पर यह सर्वे ना कर लिया जाए कि जी इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये अलग बात है कि वो सर्वे बाद में गलत साबित हो जाए, लेकिन अव्वलन ये किया जाता है कि जी ये जो ईजाद हम करने जा रहे हैं आया कि इससे इंसानियत को फायदा होगा या नुकसान होगा। अब वो साइंसदान या जो भी उनकी कहना चाहिए बॉडी होती है, वो रिसर्च करती है और वो उसको अथोराइज करती है कि हाँ जी ये ठीक है, ये इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा, यूजफुल होगा, इससे इंसानियत तरक्की करेगी, फायदा होगा, फला बहबूद होगी, दीगर दीगर। अब मामला है मोबाइल फोन का, मोबाइल फोन को भी अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, यहाँ मैं एक जुमला मोतरीजा अर्ज करना चाहूंगा इस आयत के तहत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि अल्लाह ने सारी कायनात और सारी कायनात में जो चीजें हैं वो तुम्हारे लिए बनाई है, हजरत इंसान के लिए बनाई है, तो यहाँ पे शेख अकबर मुहिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात बयान फरमाई कि औलिया इकराम की जो करामात है ना, हम करामात देखते हैं, औलिया इकराम जनाब जमीन पर हुकूमत कर रहे हैं, आसमान पर हुकूमत कर रहे हैं, और हम देखते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो आदतन महाल नजर आती हैं या आदतन समझ लें कि मुमकिन नजर नहीं आ रही होती है, खिलाफ आदत होती हैं वो बातें। तो वहां पर उन्होंने ये पॉइंट रेस किया है उलमा ने कि औलिया इकराम ने क्योंकि अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी जिंदगी को बारगाह इलाही में झुका दिया तो अल्लाह ताला ने सारी कायनात को उनका खादिम बना दिया। तो यहाँ पर मोबाइल फोन को भी अगर हम देखें तो देखें मोबाइल फोन के बेनिफिट से ही लोग बहुत सारा अर्निंग भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वो सारे पॉजिटिव साइड्स हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड्स देखें तो बिलखसूस हम अपने मुआशरे में अगर देखें तो हम मोबाइल फोन का एक पॉजिटिव यूज कम कर रहे हैं और नेगेटिव या ऐसा यूज जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे माशरे के लिए नुकसानदेह वो ज्यादा हो रहा है। एक मुझे यहाँ पे कहानी याद आ गई, महानामा फैजान मदीना 1440 सिने हिजरी के मुहर्रम में छपी थी और मुझे किसी ने बताया कि आज मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे बेटे ने कहा कि बाबा आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो उमूमन तो बच्चे कहानियां सुनते हैं, सुनाते कहा, तो वो ये अचंभे की बात थी, अनोखी बात थी। तो कहा मैंने बच्चे का दिल रखने के लिए दिया, ठीक है बेटा मैं सुनूंगा। तो अब जब रात हुई तो लेटे तो बच्चा कहने लगा बाबा मैं आपको कहानी सुनाऊ। तो चलो सुना, तो बच्चा उठ के गया और महानामा फैजान मदीना लिख रहा है, रियल स्टोरी है।
अच्छा अच्छा,
ये जो है ना वो तसव्वुराती कहानी नहीं। तो बच्चा महानामा फैजान मदीना लेकर आया और बेडरूम की लाइट खोली और पढ़ना शुरू हो गया। उस कहानी का उन्मान था काश में मोबाइल होता।
अच्छा
हाँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत गर्दिश किया इसने, काश में मोबाइल होता। उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा ये था कि मेरे बाबा जब घर में आते हैं तो घर में आने के बाद वो मुझसे ज्यादा मोबाइल से प्यार करते हैं, वो मोबाइल को तवज्जो देते हैं, उसकी बीप उसकी रिंग जो होती है वो उनकी तवज्जो ले लेती है और वो मुख्तलिफ साइट्स में मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन मुझे नहीं देख पाते। तो काश मैं मोबाइल होता कि मेरे बाबा मेरे ऊपर भी तवज्जो दे पाते और इतना कंसंट्रेशन कर पाते। तो वो कहने लगे मुझसे कि ये सुनने के बाद ना मैंने कहानी तो सुनी, मैंने बोला अच्छी कहानी है बच्चे से, लेकिन मैं अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा बच्चा जो बात मुझसे कहना चाह रहा था वो इस कहानी के जरिए कह रहा है। ये अक्सर लोगों का प्रॉब्लम है कि जब वो घर पहुंचते हैं ऑफिस से, अपने जो भी उनकी मसरूफियात हैं सारे दिन की, उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो वो ये तो चाहते हैं कि घर वाले उन पर तवज्जो दें। अच्छा, ये चाह रहे होते हैं कि घर वाले इन पर तवज्जो दें, घर वाले चाह रहे होते हैं चाहे बीवी बच्चे हों माँ बहन भाई हों, तो वो चाह रहे होते हैं ये तवज्जो दें। और इस सारे बीच में रुकावट बन जाता है मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो है उसमें लगे हुए। अच्छा, बाजू का यूं भी जताते हैं लोग के भाई मैं कोई फजूल काम नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं मसरूफ हूँ,
बहुत काम का लोड है,
बहुत काम का लोड है। तो जी ये लोड तो है आपके ऊपर, लेकिन इंसान की खूबसूरती यही है कि उसको मैनेज करे और उसको एतदाल में लेकर आए। तो वो कहने लगे कि फिर मैंने नियत की कि जी घर पहुंचने के बाद मुझे मोबाइल फोन कोशिश करनी है कम से कम यूज करूं और अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ वक्त उन्होंने तय किया।
इसमें मेहरोज भाई जो आप फरमा रहे हैं ना कि मोबाइल फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो गया है, इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस है। अब मिसाल के तौर पर कोई बोलता है मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, मेरे से कई लोग तस्करा करते हैं कि सोशल मीडिया पे जाता हूँ, तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो फिर इसके बाद टाइम का वक्त का पता ही नहीं
चलता,
गुम हो जाते हैं,
घंटों निकल जाते हैं। तो इसके पीछे साइंस है, वो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी जॉब बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, उनका काम ही यही है कि वो आप एक बार उनके प्लेटफॉर्म पर आ जाए इसके बाद फिर वो आपको
एंगेज रखना
वो वहीं पर रखना,
किसी मार्केट में चले जाएं तो उन्होंने माल बेचना ही बेचना है
ये उसी तरीके से। और बिल्कुल ये एक दुनिया है,
वजह क्या है,
दुनिया है, इसके पीछे बहुत सारी साइंस है। अब जैसे एक इस्लामी भाई मुझे थोड़े दिनों पहले बता रहे थे, हमारे ऑफिस के ही वो घर पे बैठे हुए थे, तो कोई हम व्हाट्सएप पर है ना चीजें चेक करने के लिए जाती हैं, मुख्तलिफ चीजें लिंक्स वगैरह जाते हैं, तो व्हाट्सएप पर उन्होंने लिंक खोला तो वीडियो आ गई हमारी, वो देख रहे थे चेक करने के लिए। तो बोले देखते हुए मेरी नजर उसके नीचे एक वीडियो जो आती है ना, हर वीडियो के नीचे आपको एक वीडियो जरूर मिलती है कि आप उसको देखना चाहें तो देखें,
ये भी देख ले।
तो पसंद उनके बड़े इंटरेस्ट की वीडियो थी और बड़े उनके जो वो टॉपिक सोचते थे या सोच रहे होंगे उससे मुतालिक, और उनको बिल्कुल उनकी नजर उस तरफ चली गई। वो कह रहे मैंने वो वाली वीडियो देखी, उसके बाद फिर मैं तीसरी चौथी पांचवी छठी, फिर बोला मेरे तकरीबन 2 घंटे कैसे निकल गए मुझे नहीं पता चला। और वो मुझे पता है उनका कि वो फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करते, वो सोशल प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा यूज नहीं करते, वो बचते हैं, मगर वो कह रहे उस दिन मुझे हैरत हुई कि मेरे 2 घंटे कैसे निकल गए मुझे नहीं पता चला, इतना ज्यादा है। तो इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होता है। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे हैं जैसे मेहरोज भाई हैं, इन्हें यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, ये अच्छी लगी, एक अच्छी लगी, इन्होंने जाकर गूगल पर जाकर इस टेबल को सर्च किया देखने के लिए कि इस तरह की टेबल लेनी हो नहीं लेनी हो, फर्नीचर लेना हो नहीं लेना हो, आपके ये मकसद नहीं है, अभी फर्नीचर नहीं लेना है, मिसाल के तौर पर एक टेबल लकी लगी थी, देख ली उसकी तस्वीर लेनी थी। अब वो आपने एक बार सर्च कर लिया, अब आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे ना मेहरोज भाई
जी,
आपको वो दिखाएंगे कि बेड कौन सा ले लें, सोफा ले लें, ये ले लें, वो ले लें, एड्स आपको इसी तरह की आएंगी, फिर आपको ऑफिस की भी चीजें दिखाएंगे। ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो रहा है, इसकी बेस पर हो रहा है, क्योंकि आपका तमाम डेटा उनके पास होता है। वो अब कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर आप एक वीडियो की तरफ जाते हैं और आप एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, तो जो वीडियो आप देख रहे होते हैं ना, अगली वीडियो आपको उससे मुताल्लिक वो दिखा रहा होता है, जितना
खुद उठा लेता है, खुद ही कैच कर लेता है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता है। मिसाल के तौर पर आप एक प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे सर्फ करते हैं, एक अपना वक्त निकालते हैं, तो वो आपको अगले 2 घंटे का मवाद वो उसके लिए तैयार कर रहा होता है आपके पीछे। वो आप जितना वक्त वहां पर गुजारेंगे उतना आपके तरीकेकार आपके इंटरेस्ट उसके सामने आएंगे। और वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया फ्री है, आप इंटरनेट पे आप जाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से जाते हैं, सोशल मीडिया फ्री है, कोई भी चीज़ उधर फ्री नहीं होती दुनिया में। जब कोई चीज़ फ्री हो ना तो उसका मतलब ये होता है कि आप खुद प्रोडक्ट है, आप खुद चीज़ है जो आपको बेचा जा रहा है, आप खुद बिक रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। और आप कैसे बिक रहे होते हैं, मैं इसका भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आप ऐसे बिक रहे होते हैं कि आपका वक्त, जो सबसे कीमती चीज़ है इंसान की, उनको वो चाहिए और वो चीज़ वो खरीदते हैं, आपका वक्त लेते हैं और वो आगे बेचते हैं आपका डेटा, आपकी चीज़ें उनको, जो बिजनेस अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। इसी तरीके से ये सर्कल चलता है, उनका काम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर रखना है और आपका डेटा आगे बेचना है ताकि वो उससे पैसे कमा सके। तो ये एक पूरा तरीका है साइंस है, हमें देखना है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का यूज़ कितना करते हैं। इसके लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आगे उस पर भी बात करेंगे।
सही अली भाई, इधर मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम मोबाइल फ़ोन के बेनिफिट्स पर भी बात कर रहे हैं, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या रोल है उसका माशरे में, अफराद में, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी बुनियादी है कि जब आपके सामने मंजिल होती है ना तो आपकी ड्राइव बड़ी वाजे होती है।
सही,
अगर मंजिल नहीं होगी ना तो फिर आप ऐसी विंडो शॉपिंग कर रहे होंगे,
जाना कहाँ है,
जाना कहाँ है, खरीदना क्या है आप।
सही,
तो अगर ये पहले तय कर लिया जाए ना, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिजिकली आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रही है आपकी, सोशल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो आप ये देख लें कि आपका अपना मकसद है क्या।
सही,
आपका अपना फोकस क्या है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, जिस जहाज ने, पानी के जहाज ने मदीने जाना है ना,
सही,
उसका रुख सीधा मदीने की तरफ होगा।
वाह,
और जिसने मदीने नहीं जाना, जिसका कोई ना खुदा नहीं है, जिस जहाज का कैप्टन नहीं है, जिसको चलाने वाला नहीं, वो फिर मौजों के और साहिल के रहमो करम पर होगा। तो लिहाजा अपने जहाज को, अपने सफर को फोकस भी रखें और किसी नाखुदा किसी कैप्टन के तहत भी रखें, वो आपको तूफान से भी बचा लेगा इंशाल्लाह, तूफान भी आपके जहाज का रुख जो है ना मोड़ नहीं पाएगा, समझ रहे, तूफान भी जहाज का रुख मोड़ नहीं पाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमने अपनी जिंदगी को फोकस नहीं किया है, अपनी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनाया। मैं बड़ी छोटी सी घरेलू सी मिसाल देता हूँ आपको, आजकल मौसम था पता नहीं खत्म हो गया या कुछ घरों में है, मूंगफलियां या आपके जो ये खुश्क मेवा जात है वो चल रहे हैं, बिलखसूस मूंगफली, मूंगफली कह लेंगे, बहुत ज्यादा आम है कराची में, जगह जगह पाकिस्तान में जगह जगह बिक रही। इसको मैंने खुद अपने ऊपर तजर्बा किया कि जैसे मूंगफली की जो है ना वो आके मेरे सामने रख दी गई और अब वो खाने बैठ गए, खाते रहे आप, एक एक दाना उठा के खाते रहे, बातें भी हो रही हैं, खा भी रहे आप, भले आप किताब पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अब आप खा रहे हैं, खाते खाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी मूंगफलियां खा ली। और फिर खाने के बाद ना आपको थोड़ी देर बाद फील होगा कि यार
बहुत ज्यादा खा लिया।
तो मैंने इसका हल ये निकाला है कि भाई कितनी खानी है
पहले से निकाल,
खानी कितनी है उतनी निकाल के रख दें आप।
वाह,
तो अब जब जितनी खानी है ना आप, उतने दाने जब खत्म हो जाएंगे आपको पता मेरा कोटा पूरा हो गया, अब मुझे उड़ जाना है।
इसमें महरूज भाई यही होता है कि मोबाइल फोन्स में जब हम मोबाइल फोन हम कोई भी चीज यूज करते हैं ना तो उसके तरीकेकार नहीं समझते, उसके आदाब नहीं समझते, उसके पैटर्न नहीं समझते। अब मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि आप अपनी चीज सेट कर लें। मिसाल के तौर पर आपने सोशल मीडिया यूज करना है, ठीक है, एक बंदा यूज करता है दुनिया देखने के लिए, चीजें देखने के लिए, हमारे दावत इस्लामी के अच्छी अच्छी वीडियोज आती है वो देखने के लिए, तो उसके लिए आप अपना एक टाइम सेट कर लें पहले से। मोबाइल में आप सेटिंग कर सकते हैं, मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, मैं चाहूंगा कि अगर वो दिखा भी दें, फोकस मोड करके एक ऑप्शन होता है।
सही,
फोकस मोड में होता ही यही है, एक डिजिटल वेलबींग इस तरीके से। डिजिटल वेलबींग क्या है, यही कि आपकी जो डिजिटल लाइफ है उसकी बेहतरी, उसका अच्छा होना, उसमें दिखाना ही, उसमें होता ही यही है कि आप फोन कितना यूज करते हैं, कितनी बार फोन अनलॉक करते हैं। अब ये सारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
स्क्रीन पर दिखाएगा हमारे बगदाद भाई जो फरमा रहे हैं, जरा देखें, ये वाकई बड़ा जबरदस्त है। और मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज करूंगा कि इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए, जैसे माशाल्लाह बगदाद भाई हमारे यंगस्टर्स में होते हैं, ये समझते हैं, तो मैं भी अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठा, हमारे बेटे रजा, वो भी आजकल बच्चे इसमें फास्ट होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप डेली कितना क्या यूज करते हैं, कहाँ आप उसको लॉक कर सकते हैं, आप नाइट मोड पे जाके या रात को स्लीपिंग मोड में जाकर आप उसको यूं कर दें। तो उन्होंने मेरी भी कैलकुलेशन निकाल के बताई कि डेली आप व्हाट्सएप कितना यूज करते हैं, क्या एवरेज आता है, ये तो पता लगता है कि इतने घंटे हमारे मोबाइल ले जाता
इसमें,
है।
इसमें
कंटिन्यू कीजिएगा,
दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीजें आपके सामने आती है, अपना मुहासबा करना चाहिए, चाहे
वो जबरदस्त बात है, मुझे तो खुद फर्क पड़ा इससे ना,
बताएं आगे। वो वाली स्क्रीन दिखाएं जिस पे स्क्रीन टाइम आ रहा था, इसमें देख रहे हैं आप हुजूर के 6 घंटे तकरीबन 40 मिनट फोन यूज हुआ है, ठीक है। अब इसमें व्हाट्सएप 3 घंटे 50 मिनट यूज हुआ है। इसके साथ ही अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको आपके कितने मैसेज आते हैं, आप कितनी बार दिन में फोन अनलॉक करते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें एक ऑप्शन होता है सेट गोल, आप अपना गोल सेट कर सकते हैं कि मैंने यूज ही कितना करना है।
सही।
मैंने करना ही 2 घंटे फोन है ना, तो वो 2 घंटे बाद आपको पिन कर देगा, यूज ही नहीं करने देगा आपको। अब आपको जाके सेटिंग में बंद करना पड़ेगा, एक मेहनत लगेगी, तो आपको बार बार एक रिमाइंडर आता है, एक बार बार रिकॉल होता है कि मैंने नहीं करना। जैसे इसमें फोकस मोड आप देख रहे हैं, एक और होता है फोकस, इसमें होता है आप ऑफिस में, आप घर में है, आप उसकी सेटिंग कर लें कि मैं फोकस मोड जो घर में होगा ना उसमें मैं सिर्फ ये 4 चीजें यूज करता हूँ। जैसे ऑफिस में है तो बंदा ईमेल यूज करता है या व्हाट्सएप यूज करता है, बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं यूज करता या और चीजें यूज नहीं करता। पूरे दिन में आपके पास हजारों नोटिफिकेशन आते हैं, तो आप जब फोकस मोड ऑन कर लेंगे ऑफिस का, ऑफिस में जाते ही एक बार बटन दबा दिया, वो सारी एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी, वो दिखेंगी ही नहीं आपको, ताकि आप अपना काम बेहतर तरीके से और फोकस होकर कर सके। अब हमारा फोकस स्पैन इस सोशल मीडिया ने, यकीन जानिए हुजूर, अब मैं इस पर पढ़ता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। हम मोबाइल उठाते ना हुजूर, कितने लोग ऐसे होते मोबाइल उठाते टाइम देखने के लिए, तो घड़ियां भी बहुत सारे लोग नहीं पहनते, मोबाइल उठाते टाइम देखने के लिए, वहां कोई मैसेज आया हुआ तो उसको देखते फिर रख देते हैं, अरे टाइम तो देखा ही नहीं था। ये हालत है, जिस काम के लिए उठाया वो काम नहीं हो पा रहा होता, और आप एक उठाते हैं 1 मिनट के लिए और आपका काम 1-1 घंटे का निकल जाता है, या आपका वक्त ऐसे ही निकल जाता है। तो नोटिफिकेशंस को भी अपने हिसाब से रखें। और एक और चीज भी है, मैंने कहा एक और फीचर भी बता दूं, मोबाइल में एक फोन ऑप्शन होता है, हर फोन में होता है, वो होता है डू नॉट डिस्टर्ब का, कि आप अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। उसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, अगर हम उनको यूज करें कि आप कितनी देर के लिए इसको ऑन रखना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक इस्लाई भाई थे, वो थोड़े दिनों पहले हम एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे थे ना, उन्होंने मोबाइल से स्क्रीन कनेक्ट की सामने वाली और उस पर प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। अब प्रेजेंटेशन दिखा रहे तो उसमें हर थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। अब वो 15 इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए, वो सारे आप घर से मैसेज आ जाएगा, किसी का भी मैसेज आएगा वो मैसेज पढ़ रहे, तो अब कॉल आ जाए तो वो प्रेजेंटेशन के दौरान या कोई चीज दिखाने के दौरान वो बार बार उनको वो डिस्टर्ब कर रही होगी। अब आप वो फोन भी बंद नहीं कर सकते कि भाई आपको कोई वो इंटरनेट के जरिए ही कोई चीज दिखा रहे हैं। तो इसमें डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप कितनी देर यूज करना चाहते हैं। उसको ऑन कर दिया 2 घंटे के लिए, रात को सोते वक्त ऑन कर दिया, सुबह उठेंगे तो लोग होता है यार साइलेंट कर देते हैं, याद ही नहीं रहता सुबह वो दोबारा रिंग पर करना। तो आप एक टाइम सेट कर दें। उसके अलावा इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि किसकी कॉल आनी चाहिए। अब आप चाहते हैं सिर्फ घर की कॉल आए या सिर्फ ऑफिस की कॉल आए, तो वो आपने मेंशन कर दिया, वो उसके बाद सिर्फ उसी की कॉल आएंगी, इसके अलावा आपको कॉल ही नहीं शो होंगी। तो ये इतने अच्छे अच्छे फंक्शन है, मोबाइल फोन खुद ही हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है और ऑप्शंस देता है जिसको हम यूज करके अपने आप को, अपना मुहासबा और अपने आप को कंट्रोल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में खुद नहीं होता ना। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना फोकस मोड का, इसका मैं आपको बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ, जो मैंने एक इंसान की एक साइकी है, इंसान का एक जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक ये कि आप बोले मैं रोजाना 15 मिनट फोन यूज करूंगा, उसके बाद सोशल मीडिया यूज करूंगा, फिर नहीं करूंगा। मगर 15 मिनट कब खत्म होगा आपको ये पता ही नहीं होगा, ये तवज्जो भी नहीं जाएगी, कोई तवज्जो नहीं दिलाएगा, ये आएगा नहीं। जब आप वो एक चीज ऑन कर देंगे ना, तो आपको उसको बंद करने में इतनी सेटिंग में जाना पड़ेगा और इतनी हसल करनी पड़ेगी, इतनी 4-5 स्टेप में जाके करने पड़ेंगे, तो आपको सुस्ती होगी कि चलो यार अब यूज हो गया 15 मिनट, अब ठीक है ना नेक्स्ट डे देखेंगे। तो ये एक अपने आप पर ही एक तरीके का कंट्रोल लगाना है, अपने आप को ही फंसा लें ऐसी चीजों में,
बिल्कुल सही है,
बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया में खुद जाकर फंस जाएं। और जो इन्होंने बात की ना कि आपने मंजिल वाली, बहुत अच्छी आपने हुजूर बात की इसमें, कि जो जिसकी मंजिल नहीं होती। अब सोशल मीडिया क्या है आप बताएं ना, एक आप वीडियो खोलते हैं, अब कोई बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पर आपको पूरी स्क्रीन पर वीडियो आती है, वीडियो आप एक देख रहे हैं, वो अगली वीडियो कौन सी आनी है ना आपको नहीं पता, वो आपको दिखा रहा है, आपने उनके प्लेटफॉर्म पर आना है, बाकी उनका काम है वो आपको कहां लेकर चलते, कुछ भी दिखा देंगे। इससे बेहतर ये होता है कि जब बंदा कोई चीज सोशल मीडिया पर जाए या कहीं पर भी जाए जिंदगी के किसी भी मामले में जाए, तो वो पहले देख ले कि उसने क्या देखना है, उसके हिसाब से रिसर्च करे, उस हिसाब से सर्च करे और फिर वो चीज देखे, या उन्हीं लोगों को फॉलो करे जिनको देखना है। ऐसे ही अंधा अंधा लेकर चलना और बिल्कुल चलते ही रहना और इसी तरह घंटों निकल जाना,
फिर इसमें ऐसे गर्दाब में फंस जाना जहां से वापसी मुमकिन ना हो, ये भी वाकयात हैं। अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हमने गुनाहों भरी बात को तो लिया ही नहीं है ना। अगर आप देखें तो मोबाइल फोन की वजह से टीवी स्क्रीन की वैल्यू कम हो गई है। घरों में अगर सर्वे हो, और सर्वे हो भी रहे, तो अब जो सैटेलाइट चैनल है ना वो कम यूज हो रहे हैं नई जनरेशन में, और मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके अपने बेनिफिट्स, और फिर वही वाली बात है कि हर दो साइड्स होती हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ٹی وی اسکرین جو تھی نا کمرے میں تھی علی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین جو کر رہا ہوں میں بڑے درد دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اب جو ہے نا موبائل فون ہے، اچھا یہ موبائل فون میرا ہے، میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے اوپر فنگر پرنٹ یا لاک لگا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، سورہ نور میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تمہارے دل کے اندر جو جالے بنتے ہو نا تم گناہ کے لیے، ان سے بھی باخبر ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ لفظ یصنعون جو ہے اس کی تحقیق فرمائی ہے کہ یصنعون صنعت سے بنا ہے، صنعت فیکٹری یا کوئی اس طرح کا کام، تو وہاں پہ کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، یعنی پلاننگ سے لے کر اور وہ فزیکل اس کی جو کیا کہنا چاہیے کیپیسٹی ہے وہاں تک جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہوتی ہے. یہاں پہ جو یصنعون کا لفظ آیا نا وہ بتا رہا ہے کہ گناہ کرنا تو بڑی بات ہے، تو بات کی بات ہے، ابھی تم نے عزم کیا ہے گناہ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، کس کے دل میں آیا ہے، ابھی تمہارے پڑوس والے کو بھی نہیں پتا، امی کو ابو کو بھی نہیں پتا، بیوی بچوں کو بھی نہیں پتا، تو اللہ جانتا ہے. تو موبائل فون استعمال کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ ساری ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے گی، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اعمال نامہ پیش ہوگا نا تو اس میں ایک ایک نقطہ لکھا ہوا ہوا، وہ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں ہم تو بڑے اعتدال میں رہ کے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو یہ بھی میں نے گفتگو کی ہے بڑے محتاط انداز میں کی ہے، نہیں تو اس پہ تو کیا کیا کچھ بولا جا سکتا ہے وہ میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہماری عافیت فرمائے. جانے جا رہی ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں موبائل فون کے غلط یوز کی وجہ سے، تو خدا را آپ خود بھی احتیاط کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی. اچھا اس میں ایک غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات علی بھائی، جب فیملی کی تربیت کرنے جاتے ہیں نا افراد، تو بعض اوقات اس میں جو ہے نا وہ ایک انتہا سے نکل کے دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں،
شدت
بھی وہ نا کہ جو پریکٹیکلی ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے. میں اپنے بچے کو بولوں، ایک میرا بچہ ہے جوان بچہ ہے، چلے کوئی بولے اپنے بچے کو کہ اب آپ رضا کو بولیں کہ بھائی آپ کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا نگرانی شورا بغداد بھائی کو بول دیں کہ بغداد آج سے آپ موبائل یوز نہیں کرو. میں ایک بڑی سامنے کی مثال دے رہا ہوں، آپ دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن کیا پوسیبل ہے؟ یہ پوسیبل نہیں ہوگا. تو آپ اعتدال میں لے کر آئے، اپنے بچوں کی اپنی فیملی کی یہ ٹریننگ کیجئے کہ جی یہ موبائل فون میں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پھر میں دیکھوں گا بھی، میں نگاہ بھی رکھوں گا، ان کی جاسوسی نہیں کرنی لیکن نگاہ تو رکھیں، انہیں پتا ہو کہ میرا باپ، میری ماں، میری فیملی جو ہے وہ پوچھ گچھ کرتی ہے. پھر کتنا ٹائم یوز ہو رہا ہے، کس ٹائم یوز کر رہے ہیں بھائی؟ رات سونے کے لیے بنائی ہے، کس نے کہا رات موبائل کے لیے بنائی ہے؟ رات سونے کے لیے تو سو جاؤ نا، عشاء کے بعد کیوں جاگ رہا ہو اتنا فضول جاگنا. پھر ہماری قوم بعض اوقات، کل میری کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی بے روزگاری ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ کے بندوں کبھی اپنے حرکتیں بھی تو چیک کرے بندہ کہ میں کر کیا رہا ہوں شب و روز، یعنی مجھے کام کاج کچھ کرنا نہیں ہے، محنت کچھ کرنی نہیں ہے، سیکھنا کچھ ہے نہیں، پڑھنا کچھ ہے نہیں، اور جناب عالی کی جو ہے نا خواہش یہ ہے کہ بس میں چیئرمین سیٹ پہ بیٹھا رہا ہوں اور مجھے جو نا ایک اچھی پے مل جائے، یا میرا کاروبار ہو 100-150-200 افراد کی کمپنی ہو اور ان کو میں چلا رہا ہوں اور جب دل چاہے جو دل چاہے کرتا رہوں. تو پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جو کوئی کسی مقام پر ہے نا، بہت کم، بہت شاذ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا پرچیوں کے ذریعے سے اور کسی سفارش کے ذریعے سے کسی جگہ پہنچ جائے، اور پہنچ بھی جائے نا گراؤنڈ میں سفارش کے ذریعے سے، پرچیوں کے ذریعے سے، تو وہ اسٹیبل نہیں رہتا. کتنی دیر کھیلے گا وہ پرچی کے ذریعے؟ نہیں چل سکتا. آپ کو اپنی جو صلاحیت ہے وہ بروکار لانا پڑے گی، اس کو اپنی ایفیشنسی جو ہے اسے شو کرنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے کرو گا. اب آپ جب رانگ وے پہ چل پڑو گے نا تو رائٹ وے کی تو سوچ نکال دو اپنے ذہن سے. اب جب آپ موبائل فون یوز کر، بغداد بھائی بار بار ڈسکشن یوں بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو ان کا شعبہ ہے اور پھر یہ موجود بھی ہیں، غیبت سے بھی بچ جاؤں گا میں، اور کوئی ایسی بات ہوگی تو ابھی معافی تلافی بھی کر لوں گا. بغداد بھائی موبائل فون یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، 8-10 گھنٹے یوز کرتے ہیں، تو یہ ہم ان کا پلس ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے، کیونکہ ان کا شعبہ ہے، یہ اپنے شعبے کے لیے مختلف چیزیں کریں گے، دعوت اسلامی کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ انہی کے تحت چل رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ جی اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہوں گے، چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، آبزرویشن کر رہے ہوں گے اور کاز چیک کر رہے ہوں گے، تو صحیح ہے. لیکن مہروز مدنی اگر 10-8-6 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو علی بھائی کہیں گے مہروز بھائی کرنے کے کام کرو، کیا کر رہا ہو؟
یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ میں اپنی ایک ویسے ہی ایک بات بیان کر دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور موبائل فون جب ایک سوشل میڈیا کا یوز ہوتا ہے کام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے زیادہ تر, تو اور میرا یوز بھی بہت زیادہ ایکسیسو ہو گیا تھا. کہ ہوتا ہے نا بندہ پھنس جاتا ہے اس جال میں, اللہ بس حفاظت کرے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا درد وہ بیان کر سکوں جس سے میں گزرا ہوں. اور میرا اتنا فون یوز ہو گیا تھا کہ میں ہر وقت میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا, بند ہی نہیں ہوتا تھا موبائل, کھلا ہی رہتا تھا دس دس گھنٹے, بارہ بارہ
گھنٹے.
دیکھیے ذمہ داری
لگ گئے تھے نا, ہو گیا تھا,
وہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے عادت بنائی ہے اپنی. یقین کریں میں نے اپنے آپ کو پاور موبائل نہیں اٹھاؤں گا. اب کسی آپ کے ساتھ میں بیٹھا پاؤں گا نا, آدھا گھنٹہ ہو جائے میں موبائل نہیں اٹھاؤں گا, سائلنٹ کر دوں گا. حالانکہ سامنے والا اٹھائے گا, میں نہیں اٹھاؤں گا. میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے نہیں کہ وہ اس کا وہ ہے, ایک تو یہ کہ ریسپیکٹ فل وے ہونا چاہیے. جب کوئی بیٹھا ہوا ہو تو سامنے ویسے ہی ایک مینر موبائل کے, آپ ہر وقت موبائل اٹھا لیا, ہر وقت موبائل اٹھا لیا, دیکھ لیا, کوئی کام نہیں آ رہا, کوئی میسج نہیں آ رہا, پھر بھی یہ عادت ہے بھائی کیا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا دیکھنا ہے. اچھا اٹھانے کے بعد بھی ہوتا ہے یار کیوں اٹھایا میں نے فون, اٹھایا اب واپسی رکھ دو. تو یہ بڑی بری عادت پڑ جاتی ہے, مسل میموری ہو جاتی ہے انسان کی. میں وہ ایک تو ہوتا ہے نا دماغ, ایک ہوتا ہے مسل میموری, بار بار ہاتھ جائے گا موبائل کی طرف, خود جائے گا. ایک یوز جو ہو جاتے اتنا زیادہ موبائل فون سے, تو عادت بنائے تھوڑا سا موبائل کم یوز کرنے کی, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. اچھا آپ کو دنیا اچھی لگنے لگے گی حضور, میں آپ کو صحیح بتاؤں. آپ لوگوں سے انٹریکشن کریں گے نا, سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں آپ لوگ, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اتنا, آپ سوشل گیدرنگس پہ جب بیٹھیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے, ریئل لوگوں سے اصلی میں بات کریں گے, تو اللہ نے چاہا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور آپ کا فوکس اسپین اچھا ہوگا. ہمارا فوکس اسپین خراب کر دیا اس نے, ہم 15 سیکنڈ سے زیادہ کسی چیز پر توجہ نہیں دے سکتے. ہمارا ہوتا ہے یار کچھ اور دیکھنا ہے, ادھر دیکھنا ہے, ادھر دیکھنا ہے, اس طرف دیکھنا ہے. 20 سیکنڈ سے زیادہ, 1 منٹ سے زیادہ, 2 منٹ سے زیادہ, یہی ہے نا سوشل میڈیا پہ جتنی شارٹ ویڈیوز آ رہی ہیں, شارٹس کا کلچر بہت زیادہ چلتا جا رہا ہے کہ اور شارٹ دکھائیں, اور کم منٹ اور کم وقت میں ہمیں پوری سب چیزیں مل جائیں. تو یہ جتنا زیادہ فوکس اسپین ہمارا شارٹ ہو رہا ہے, اتنا ہماری زندگی میں بھی افیکٹ کرتا ہے. ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں نا زیادہ دیر, کہیں بیان سن رہے ہوں, تو وہی ہوتا ہے 15 منٹ بعد کے بس اب اینڈ ہو
جائے. اس کا بڑا فائدہ بھی ہے, اس بات کا بڑا فائدہ بھی ہے. آپ دیکھیں گھروں میں نا جھگڑے ختم ہو گئے اس وجہ سے.
اچھا یوں,
ہاں چائے صحیح نہیں بنی, مجھے بات پھر آپ انشاءاللہ کاؤنٹر کیجئے گا. چائے صحیح نہیں بنی, کھانا صحیح نہیں بنا, مرچے زیادہ ہیں, نمک کم ہے, روٹی ٹھنڈی ہے, ٹھیک ہے نا, پانی ٹھنڈا نہیں ملا, کپڑے پریس صحیح نہیں ہوئے, دھلے صحیح نہیں, یہ ساری پنچایتیں ختم ہو گئی ہیں. بندہ موبائل فون استعمال کرتے کرتے چائے پیتا ہے, موبائل فون استعمال کرتے کرتے کھانا کھاتا ہے. تو اب جو وہ ایک لذت اور ذائقے والی کیفیات تھی نا پہلے, وہ مجھے ایسا لگتا ہے کم ہو گئی.
نہیں ریئل واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ہوا یہ, بلکہ ایک سے زائد دفعہ ہوا, کھانا کھاتے رہے, واٹس اپ یا جو بھی اپنا موبائل چیک کرتے رہے. کھانا کھانے کے بعد جب اٹھے تو گھر والوں سے پوچھتا کیا پکایا تھا, تو گھر والوں نے کہا آپ نے کھایا کیا تھا. تو آسان بھی کر دی ہے موبائل نے زندگی, مشکل بھی کر دی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم پر ہے کہ اس کا استعمال کیسے کر. کچھ کال ہیں وہ لیتے ہیں.
محمد عمران اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا تعلق شعبہ روحانی علاج سے ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں, ان میں بعض بچے بھی ہیں, بعض بڑے بھی ہیں. بچوں کے ذہنوں پہ جو ہے خوف بیٹھ جاتا ہے موبائل زیادہ استعمال کرنے سے, گیم کھیلنے سے, دیگر چیزیں دیکھنے سے. اور اسی طرح بڑوں کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی, اور موبائل زیادہ استعمال کرنے سے ان کے اندر چڑچڑاپن اور دیگر بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں میں اس طرح کے جو ہے وہ بیماریاں سامنے آتی ہیں کہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں, اور ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پہ جو ہے جنات کا اثر آ گیا ہے. اور ان سے ہم نے موبائل فون دور کروایا, موبائل بالکل جو ہے وہ ان سے ہٹا لیا گیا, اور ان کو موبائل دینا بند کر دیا گیا. تو بچے صحیح ہو گئے, ان کی آنکھوں کی بیماریاں دور ہو گئیں, اور یہ موبائل کا بیجا استعمال کا جو ہے وہ ایک نقصان جو ہے وہ سامنے آیا ہے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کال جو تھی یہ خود ایک سمجھ لیں کہ تربیت تھی. اس پر مزید ڈیٹیل میں تو کیا جائیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی لمیٹڈ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ایک وقت تک ہی ہم نے پروگرام کرنا ہے. جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ٹائم بہت کم رہ گیا, جب اپنا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں, ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں. تو مدنی چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں, مدنی چینل کے پروگرامس دیکھتے رہیں, اللہ کی رحمت سے یہ تربیت ہوتی رہے گی. تو بچوں کا موبائل فون کا استعمال یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے سوال بھی آیا, یہ بچے ضد کرتے ہیں, نہیں مانتے, ماں کھانا نہیں بنا سکتی, کام نہیں کر سکتی, تو اس کو بھی انگیج کرنا ہوتا ہے, کیا کریں؟
واقعی موبائل فون بچوں میں تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اب اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے اور بچوں کے لیے. اور واقعی تو چیزیں اچھی بھی نہیں بنتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے اس کی کوئی بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے, بہت زیادہ کچھ سیکھ رہے ہوں, کیونکہ اکثر چیزیں خراب ہی ہیں. اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اور ہمارے माशाल्लाह दावत इस्लामी की वजह से एक किड्स लैंड हमारा यूट्यूब चैनल है, मदनी चैनल किड्स आया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे आ रहे हैं यूट्यूब किड्स, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो एक यूट्यूब किड्स की एक अलग एप्लीकेशन है जो सिर्फ बच्चों के लिए, उस पर सिर्फ बच्चों की चीज़ें होती है, और वो इस मामले में कि उस पर और दूसरी चीज़ें नहीं आती और आप उस पर एक टाइम सेट कर सकते हैं, यूट्यूब की अपनी एप्लीकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी हमारा किड्स लैंड अब आ चुका है, तो बच्चों को उसी तरह की एप्स दें और उन्हीं पर दें, और मोबाइल से देते ना बच्चों को, तो अब हर मोबाइल में एक किड्स का ऑप्शन होता है, पेरेंटल कंट्रोल का एक ऑप्शन होता है, वो करके दें कि एक घंटा यूज होगा, दो घंटे यूज होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा, थोड़ा बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड करें। वो मोबाइल फोन देते इसलिए हैं कि खुद भी मोबाइल में लगना होता है,
सही, जान छुड़ानी,
जान छुड़ानी होती है कि भाई खुद भी अपना काम कर सके, मोबाइल में लगे रहें और बच्चों को भी दे दें। आप खुद जितना ज्यादा यूज करेंगे ना, बच्चा आपको देखकर ही सीखता है, आप जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उन चीजों से जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा उसमें देखे। आप चले, आप वालिद हैं, आप वालदा हैं, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है यार मैंने बहुत ज्यादा यू, अब तो बड़े जब फंस जाते हैं तो बच्चे क्या है, बच्चे तो फिर जिद कर करके घंटों घंटों लेकर बैठे रहेंगे और उससे उनके वाकई नींद के मसाइल और बहुत ज्यादा इस पर अब बढ़ते जा रहे हैं, आंखों के मसाइल, फिर आजकल बच्चों में सर दर्द की शिकायतें कितनी आती है, छोटे छोटे बच्चे, मैं जगह गया था, सर में दर्द होता है, तो मैंने तो मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा है तो वो सर में दर्द हो जाता है, इतने से बच्चों के सर में दर्द होना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, जितने भी ये आप सोशल मीडिया और मोबाइल फोन और इंटरनेट की जो आप चीजें देखते हैं ना, इस पर बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े लोग इस पर रिसर्च करते हैं और अवेयरनेस देते हैं, हम असल में वो चीजें नहीं देखते जो हमें देखनी है, हम सिर्फ मोबाइल फोन में जाते हैं और बस वो एक स्क्रॉलिंग, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग बोलते हैं इसको, ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग बोलते हैं, और हम वो करते ही जाते हैं और अपनी जिंदगी और अपनी फिजिकल हेल्थ भी खराब करते हैं। आप देखें ना, लोग जो पहले बाहर निकल कर जो एक होता था, लोग बच्चों से इंटरेक्शन होती थी, अब पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, उसकी वजह यही होती है कि वो बाहर ही नहीं निकलते, घर से
एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है,
बहुत ज्यादा इसका नुकसान है।
एक चीज़ है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवामिउल कलीम की एक सिफत अता फरमाई कि आप मुख्तसर बात में बड़ी गहराई के साथ समुंदर जो है वो बंद कर देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, उस पर अमल पैरा हो जाए, तो इंशाल्लाह मोबाइल फ़ोन हो या दीगर ऐसी चीज़ें हों जो हमारी ज़िंदगी में बेअतदाली और अनबैलेंस कर रही हों, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आ जाएगी। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के मर्द के हुस्न इस्लाम के में से यह है, इस्लाम की खूबसूरती में से यह है कि वो हर उस चीज को तर्क कर दे जो फजूल हो, जो इस चीज से दुनिया का या आखरत का कोई फायदा नहीं है उसमें ना पड़े। आप यकीन कीजिए, मदनी चैनल एक मजहबी प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको ऐसी ही बात मिलनी है, लेकिन आप दुनियादारी के तकाजों के तहत भी देखें ना, जिन लोगों ने दुनियावी अचीवमेंट भी की है ना, उन्होंने फजूल काम छोड़े, तो आप उनका फोकस बड़ा क्लियर था, तो आप भी अपना फोकस क्लियर कीजिए। और बच्चों के हवाले से जो बात की ना अली भाई आपने, बच्चे मांगते हैं टाइम,
तवज्जो,
इंगेजमेंट मांगते हैं बच्चे, अब जब आप नहीं देंगे ना, वो कहीं और से लेंगे, फिर यही बच्चे जब 12 साल 15 साल 18 साल 20 साल के हो जाएंगे, तो फिर आप बैठे हुए होंगे किसी मस्जिद के इमाम के आगे, किसी आलिम साहब के आगे, किसी आमिल साहब के आगे, और कह रहे होंगे मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, तो बहुत माजरत के साथ फिर बच्चे आपकी नहीं सुन पाएंगे, वो बच्चे गलत करते जो नहीं सुनते, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। आप बच्चों को अभी से अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी जो कहते हैं अपना साहिबान उसके नीचे रखिए, तो अल्लाह ने चाहा जब ये बच्चे बड़े होंगे इस तरबियत का फायदा आपको बुढ़ापे में हासिल होगा इंशाल्लाह।
मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, मोबाइल के प्लस माइनस दोनों ही है, ये इस्तेमाल करने वाले पर है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि आगे आग पर खाना पका लें या जलती हुई आग पर हाथ रखें तो क्या अंजाम होगा, छुरी है, गोश्त सब्जी फ्रूट्स काट लें, अल्लाह ना करे किसी को जख्मी कर दें, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं ये मोबाइल, इससे फवायद वाकई हुए हैं, इतने हुए हैं कि बज़ाहिर कम्युनिकेशन आसान हो गया। मुझे याद है कि रुकनी शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई कई साल पहले बांग्लादेश आए थे, इनके वालिदैन हयात थे, अल्लाह करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तो हम जदवल पर थे, बयानात थे, रात एक जगह हम आकर ठहरे, लेट नाइट था, इन्होंने उस वक्त तो ये व्हाट्सअप वगैरह नहीं थे, तो गालिबन स्काइप था मुझे जो याद पड़ता है, तो वीडियो कॉलिंग होती थी, तो उन्होंने कहा अली भाई थोड़ी सी मुझे सेपरेशन चाहिए, मैंने कहा ठीक है, एक रूम में बैठ गए, थोड़ी देर बाद वो फ्री हुए तो हमारी बातचीत हुई, तो मैंने कहा आई सब खैरियत, खुश थे,
فرماتے ہیں یار میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اپنے والدین سے بذریعہ ویڈیو بات کروں، ان کی دعائیں لوں، ان کی دل جوئی کروں. تو یوں بنگلہ دیش رہ کر اور بھی کئی کنٹریز سے بتا رہے تھے کہ ان کا معمول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ والدین کی بارگاہ میں اگر میں فزیکلی نہیں تو یوں میں حاضری دوں. تو کرنے والے یہ پازیٹیو کام بھی کرتے ہیں کہ یوں فاصلے جو ہے وہ اس کے ذریعے کم کر کے اور فائدے والے کام لیتے ہیں. اور جس طرح ہمارے مبلغین نے بتایا، بغداد بھائی نے، مہروز بھائی نے، کہ نہ کرنے والے کاموں میں بندہ گم ہو جاتا ہے، اپنی ہی فیملی میں رہ کر اپنی فیملی سے لا تعلق ہو جاتا ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، کسی کے گھر جاتے ہیں جاتے ہیں پہلے پاسورڈ مانگتے ہیں، سب اپنے اپنے موبائل میں محفل لگی ہوئی ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، دادا دادی، نانا نانی بیٹھے ہیں اور سب اپنے موبائل میں لگے ہیں، ویسے بھی اخلاقاً درست نہیں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو پروگرام کا ٹائم ہے، دل تو کر رہا ہے کہ اس کو بڑھائیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو مینیج کریں، اپنی لائف کو مینیج کریں. جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ کسی پر کیا کنٹرول کرے گا. اگر آپ فیملی کے بڑے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی فیملی کو لے کر چلیں، پازیٹیو انداز میں لے کر چلیں. میں ینگسٹر سے عرض کروں گا کہ موبائل میں گم نہ ہو جائیں، یوز کریں جتنا کرنا ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز، جب ہم چھوٹے تھے تو فزیکل ایکٹیویٹیز تھی. آج کل کہتے ہیں کہ بچے ذہین ہیں، ذہین تو ہیں لیکن اگر سوشل میڈیا میں، موبائل میں گم رہے تو فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہوگی، تو اس پر صحت پہ بھی اثرات پڑیں گے، تعلیم پر بھی اثرات پڑیں گے، بہت سارے گھر میں بھی خراب اثرات پڑیں گے. میں اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات وہ کنبہ، قبیلہ، گھرانہ بڑا ہوتا ہے. اب بالفرض کوئی اسلامی بہن ہے، ان کی چار پانچ چھ بہنیں ہیں، دو تین بھابیاں ہیں، ایک امی جان ہیں، ایک ابو جان ہیں، اب ڈیلی ایک ایک کال آتی رہے اور وہ آدھا پونا گھنٹہ بات کر کے کہیں کہ بہن ابھی تو کچھ بات ہی نہیں کہی، میں مصروف ہوں، ذرا کھانا بنا لوں پھر بات کرتے ہیں. تو گھر کے مردوں پر کیا گزرے گی کہ آدھا پونا گھنٹہ بات کر کے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو بات ہی نہیں کی، تو بات آپ کی شروع کب ہوگی؟ کیونکہ ساری آپ نے بتانا ہوتا ہے، آج کیا پکایا، کل کیا پکانا تھا، آج کون سا جوڑا پہنا، کل کون سا پہننا تھا. پھر گناہ سے بھی بچنا ہے، جیسے مہروز بھائی نے بھی بتایا، بغداد بھائی نے بھی بتایا کہ یہ تو ہم وہ اس کے پلس مائنس بتا رہے ہیں، جو صحت، بچے، یہ سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے اگر سوشل میڈیا میں گم ہو کر گناہوں میں چلے گئے. اور گناہوں میں جا کر ہم ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں جا کر اگر ہم نے اس کی ہسٹری ڈیلیٹ بھی کر دی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ آنکھیں خود گواہی دیں گی، یہ زبان خود گواہی دے گی، یہ کان خود گواہی دیں گے. رات کو اندھیرے میں، کونے میں، اپنے بلینکٹ میں، اپنے بیڈ پر ہیڈ فون لگا کر اگر آپ کچھ سن رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں اور اپنی خوش فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اپنے موبائل میں کیا رکھنا چاہیے، کیا نہیں رکھنا چاہیے، فیملی فوٹوز، اور یہ اس پر ایک بہت زبردست ویڈیو، ایک میسج ہے نگران شورا کا، بہت زبردست میسج تو تھا کہ ہم آخر میں آپ کو دکھائیں گے کہ نگران شورا کی مبارک زبان سے، پیاری زبان سے آپ وہ سنیے کہ نگران شورا کیا فرما رہے ہیں.
How can they do it? لوگ اپنی فیملیز کی فوٹوگراف گروپ پہ شیئر کر لے ہوتے ہیں، آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے موبائل میں کیوں لے کر گھوم رہے ہو؟ آپ کیا موبائل کا ڈیٹا چوری نہیں ہو رہا؟ ایک کیبل لگا کر فوراً ڈیٹا نکال لیتے ہیں. تو آپ بولے میں نے اس کا پاسورڈ یا پین کوڈ لگایا ہوا ہے، ویری سوری ٹو سے، سب کھل جاتا ہے. اس کے اندر خدا نہ کرتا کوئی ایسا ڈیٹا نکل آیا، کوئی ایسی ویڈیوز نکل آئی، آپ کے کانٹیکٹس نکل آئے، اس نے آپ کو فوٹو بھیجی کہ اتنے پیسے دو تو پھر میں کروں گا. جو سائبر کرمنل لوگ ہیں، جو سائبر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے جو چوریاں کر رہے ہیں، پلیز ان سے ہوشیار رہیے. ہماری بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، انہوں نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ یہ اپنی چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ ان کو بالکل جائز بھی نہ تھا. میرا آپ کو مشورہ ہے، منگیتر کو بھی اپنی تصاویر شیئر نہ کریں. کیا منگنیاں نہیں ٹوٹتی؟ شادی کے بعد بھی چیزوں کی حفاظت کریں. کیا طلاقیں نہیں ہو جاتی؟ میں آپ کو حیا، شرم کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں، آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اپنی اس طرح کی تمام ویڈیوز، تمام انفارمیشنز کو ڈیلیٹ کر دیں. کیا آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب خدا نہ کرتا آپ بلیک میل ہو رہے ہوں گے، پھر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کلپ یاد آئے گا کہ یار سمجھایا تھا میں نہیں سمجھا.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، تربیت کی حاجت سب کو ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، گھر اور معاشرے میں موبائل کا استعمال. میں آخر میں ہمارے بغداد بھائی سے یوں عرض کروں گا کہ آج کل بغداد بھائی کالنگ کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ شاید زیادہ یوز ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی آسان استعمال، کوئی آسان طریقہ کہ واٹس ایپ سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں،
असल में मैं ना आजकल नोट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप तो एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और हमारी बहुत सारे जो जिम्मेदारान हैं दावत इस्लामी के बिलखसूस, और हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क व्हाट्सएप पर मौजूद है और उस पर हम काम कर रहा है खास तौर पर। अब मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है, तो मुझे फिर इसका हुआ खुद तजर्बा हुआ, तो आपको फील होता है कि आपके साथ क्या ऐसे मामलात होते हैं, कैसे हादसात होते हैं। अब जैसे लोकेशन वाला जो मामला है, वो लोग लोकेशन आपको सही भेजते नहीं है, जब सही भेजते नहीं है लोकेशन तो आप सही जगह पहुंच नहीं पाते। तो इसी तरह मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये लोकेशन जब भेजे ना आप, तो ये सामने आपके सामने आ रही है लोकेशन। अब जैसे इस तरह आ जाती है, ये करंट लोकेशन आपको भेजनी है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं ये 12 मीटर एक्यूरेट टू 12 मीटर, ये कहीं 100 भी मीटर होगा,
अच्छा
कहीं 150 मीटर भी होता है, कहीं 200 मीटर भी होता है। तो जब भी भेजें 6 से 8 मीटर, इसको थोड़ी देर रोक लें, आप रिफ्रेश करें, ऊपर राइट साइड राइट टॉप पर रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, रिफ्रेश करके जब आप लोकेशन भेजेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे और बंदा एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचेगा। ये एक्यूरेट टू 12 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये आप जहां की लोकेशन भेज रहे हैं इसके 12 मीटर के अंदर अंदर की ये लोकेशन है। एक चीज तो ये, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा ऐसा हो चुका है कि मैं अभी थोड़े दिनों पहले आपके पुराने शहर हैदराबाद में जाना हुआ था, और वहां पर अब जिस सोसाइटी में हमें जाना था, निगरानी शूरा का बयान था, तो हम उसकी पीछे वाली बिल्कुल बैक सोसाइटी में पहुंच गए, क्योंकि घर दोनों के साथ थे,
दीवार सामने दीवार थी,
15-20 मिनट। और ऐसे कई दफा होता है कि आप लोकेशन, क्योंकि उसने भेजी होगी तो वो 100 मीटर के अंदर अंदर, तो उसने आसपास की कोई लोकेशन दिखा दी।
इसमें पता है, मैं एक चीज ऐड करूं, खुद मुझे तजुर्बा, यानी मैंने किसी को भेजी और यहाँ से उस बेचारे के साथ हुआ, तो आपका घर या जो इमारत है ना, उसका जो आपका गेट है जहां से आमदोरफ्त है, उसके करीब से आप भेजें बिलखसूस।
एक तो
अगर आप
तो
बैक साइड से भेजेंगे,
अब मिसाल के तौर पर आप जहाँ लोकेशन भेज रहे हैं ना, अब 100 मीटर है तो वो आगे पीछे कहीं पे भी जा सकते हैं।
जी जी जी,
वो कहीं
अच्छा,
गली
पीछे
में भी आगे पीछे गली में भी चला जाते हैं लोग, और वो बोलते हैं हम तो एग्जैक्ट लोकेशन पकड़े हैं जो आपने दी थी, मगर ये वो होती नहीं, क्योंकि बंदे ने लोकेशन ही सही नहीं दी होती। तो हमेशा चंद सेकंड रुक कर फिर लोकेशन दे, करंट लोकेशन जिस बंदे को आपने बतानी है। इसके साथ साथ एक और फीचर भी होता है जो मैंने कहा बताऊं, वो ये होता है कि आप लोग मोबाइल, आप हर किसी के साथ ऐसा ही मामला होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं मगर जवाब नहीं मिलता, जवाब, क्योंकि इतने सारे मैसेज हो जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं। तो इसी में बड़ा अच्छा फीचर है, हम लोग खुद भी इसमें हो जाते हैं कभी कभार रिप्लाई नहीं कर पाते, तो हमेशा मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है, आपने किसी का मैसेज खोला है और आप उस वक्त जवाब नहीं दे पा रहे, आपको पता है मैंने बाद में देना है इसको जवाब, तो मार्क एज अनरीड कर दे, तो एक राइट साइड पे नीचे येलो ग्रीन कलर का डॉट आ जाता है, जिससे आपको ये याद दिलानी रहती है कि भाई मैंने इनको रिप्लाई करना है या इनका मैसेज मैंने बाद में,
पेंडिंग है अभी काम करना है इस पर।
इसी तरह व्हाट्सएप बिजनेस में बड़ा अच्छा फीचर है ये लेबल्स का, ये दिखा रहे ना लेबल्स का, तो लेबल्स आप जब लगाते हैं ना तो मुख्तलिफ कलर्स के लेबल्स हैं, कहेंगे मैंने ये वाला लेबल लगाना है, मिसाल के तौर पर इन लोगों से मैंने मदनी काफलों की डेट्स लेनी है, इन लोगों को मुझे एक कुछ अपडेट देनी है, रिसाले भेजने हैं, तो आपने उनके लेबल्स लगा दिए कलर वाले, तो आपको याद रहेगा जब आप उसमें जाएंगे ना, तो ये 10 लोगों को मैंने काफले भेजने थे इन लोगों को, और मदनी काफलों की डेट्स लेनी थी, तो आप यहाँ पर अपना नाम भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना, जैसे लेबल लगेगा उस पर कलर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, भाई ये कलर आ गया, अब आपको इससे पता चल जाएगा जब आप लेबल्स में जाएंगे तो आपको सिर्फ वही चैट्स नजर आएंगी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर है व्हाट्सएप में, जो हमारे लोग यूज नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली यूज करना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज आई है तो उसका पूरा और बेहतर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। खास तौर पर एक हमारे यहाँ होता है आर्काइव का ऑप्शन, ऊपर देख रहे हैं आर्काइव का एक नया ऑप्शन आया है व्हाट्सएप में। इससे होता है, आप मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी हमारे होते हैं जिन्हें आप दिन में पूरा वक्त नहीं देख सकते, तो आप उसको आर्काइव कर दें। आर्काइव में एक ऑप्शन होता है कि कीप इन आर्काइव, हमेशा उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना तो वो एक चीज आर्काइव में चली गई, आर्काइव में जैसे ही जाएगी वो आर्काइव में ही रहेगी। इस तरह आपके समझ लें जो मैसेजेस आपने देखने नहीं होते या इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो आप बाद में देखेंगे या लेट देखेंगे या रात में किसी वक्त देखते हैं, तो वो आप आर्काइव में रखेंगे तो वो ना वो आपका फोन बार बार बजेगा, ना उसका नोटिफिकेशन आएगा, और वो म्यूट भी रहेगा, और इससे बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा सर्च का ऑप्शन होता है, लोग मैसेज कर देते हैं मिलते नहीं है, तो अब सर्च भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उसको भी यूज करना चाहिए। कि अब तो बहुत अच्छा फायदा हो गया है कि आप सर्च जो करना चाहते हैं वो पिक्चर्स के जरिए भी कर सकते हैं, वीडियोस के जरिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक पिक्चर आपने भेजी थी बहुत टाइम पहले, मुझे याद नहीं है मगर वो मुझे पिक्चर याद है, वो पिक्चर या वीडियो जो आपने मुझे भेजी थी वो मुझे याद है। अब मैं जब पिक्चर्स या वीडियोस से जाकर ढूंढूंगा तो मुझे वो वीडियो जैसे ही मिलेगी ना तो उसमें आपका नाम आ जाएगा कि मुझे ये आपने भेजी थी।
सही।
तो इससे बड़ी आसानी होती है। साथ में एक और सर्च का ऑप्शन होता है, चैट में आप लोगों से बात करते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं वर्ड्स के साथ, आपको कोई भी वर्ड याद आता है तो उससे बड़ी आसानी होती है। लोग, मैं देखता हूँ जरूर, किसी को मैसेज करना होता है ना, मैं मेरी तो कई लोगों के साथ बैठना होता है, तो वो आप मिसाल के तौर पर, मैंने उस दिन उस बंदे ने मैसेज किया था, मिसाल के तौर पर मेहरोज भाई ने मैसेज किया था, मेहरोज भाई की चैट ढूंढ रहे, मिली नहीं रही, नीचे जा रहे हैं, अच्छा यार कहाँ चले गए, फिर वापस आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, तो सर्च कर ले, बहुत आसान होता है सर्च करना, टाइम बचता है। अगर आप उसकी एक बार, अच्छा लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती सर्च करने की, मगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, टाइम बहुत बचता है इससे। तो जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, जब हम इस तरह की एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो इसके तमाम फीचर्स से हमें आगाह होना चाहिए और मालूमात होनी चाहिए। जिस तरह आपने एक बात कही थी ना उधर मैनेज वाली, तो आपने कहा कि जिंदगी को मैनेज लेकर चले, मैं एक ऐसे ही कहना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा इस मामले में, कि अपने मोबाइल को अगर लोग मैनेज कर लेना अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह उनकी जिंदगी मैनेज हो जाती है। क्योंकि अब हर चीज का ताल्लुक अलार्म से लेकर, नमाज से लेकर, इबादतों से लेकर, उसका ताल्लुक मोबाइल से होता है, कि मोबाइल फोन होता है तो इबादत में भी खलल पैदा करता है। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन की लाइफ को मैनेज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हो सकता है आपकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके और वक्त बचा सके।
सर एक छोटी सी दो एप्लीकेशन बताना चाहूंगा मैं, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। बच्चों के लिए ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन जो है वो आप दे दें, इंशाल्लाह इल्मे दीन भी आएगा, बच्चे इन्वॉल्व भी रहेंगे, क्योंकि क्विज एप्लीकेशन है तो बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसके अंदर। दूसरा एक हमारी प्रे टाइम एप्लीकेशन है, तो ये तो हर मुसलमान के मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, कभी कहीं है कभी कहीं है, कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट मूवमेंट आ जाती है और आपको पता नहीं होता, आप समझते हैं वक्त खत्म हो गया और आप फिर नमाज नहीं पढ़ते कि अब तो कजा हो गई, अवाम की बात में कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। तो वहां से आपको परफेक्ट और एक्यूरेट टाइमिंग मिल जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो नमाज की जो पाबंदी है, कजा होने का जो मसला है, उससे आप बच जाएंगे और आफियत में रहेंगे।
बहुत सारी एप्लीकेशन दावत इस्लामी की हैं, आप दावत इस्लामी की आईटी डिपार्टमेंट या सोशल मीडिया नेटवर्क पर जाकर एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लें। सिरातुल जिनान है, तफसीर कुरान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मोबाइल के अंदर कुरान भी पढ़ते हैं और दीनी किताबें भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखते हैं। तो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।